यह एक ओर से समुद्र में खुलती है तथा स्थानीय निवासियों के लिए सुरक्षित बंदरगाहों का कार्य करती है। प्रवाल भित्तियों के पश्चिमी तट मृत प्रवालों से बने मध्यम ढाल के हैं, जिनकी चौड़ाई 90 मीटर से 1 किलोमीटर तक की है। इसके बाद समुद्र की गहराई एकाएक 20 फैदम से 200 फैदम हो जाती है। ये द्वीप समूह विषुवत रेखीय जलवायु की पेटी में आते हैं। वार्षिक तापमान व वर्षा का औसत क्रमशः 25 सेंटीग्रेड तथा 250 सेंटीमीटर है। वर्षा वर्ष भर होती है। द्वीप की अर्थव्यवस्था नारियल की कृषि पर आधारित है। इसकी कृषि बागाती व वैज्ञानिक ढंग से की जाती है। इस समय भूमि को साफ कर धान की कृषि भी प्रारंभ की गई है। यहाँ के निवासियों का मुख्य उद्यम मछली पकड़ना व नारियल व उसकी जटा पर आधारित उद्योग जैसे तेल निकालना, रस्सी व दरी बनाना है। क्वायर ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर पर 800 व्यक्तियों को ट्रेनिंग दिया जाता है। मछली मारने का कार्य झीलों में वर्ष भर तथा गहरे समुद्र में सितंबर से मई तक चलता है। टूना मछली के बड़ी मात्रा में उपयोग के लिए 1963 में अगाथी में टूना कैनिंग फैक्ट्री प्रारंभ की गई। कावाराथी, अगाथी व मिनिकाय से मछली को सुरक्षित रखना तथा पैकिंग करना इत्यादि प्रमुख उद्यम है। कारावाथी के नावों के बनाने का कार्य होता है। काल्पेनी तथा कावाराथी प्रत्येक में एक होजरी फैक्ट्री है। चेतलत में एक को ऑपरेटिव हैंडलूम फैक्ट्री है। अगाथी में एक बुनाई केंद्र तथा कावाराथी में एक मुर्गीशाला है। संपूर्ण क्षेत्रफल का 25% ही बसा हुआ है। 1981 की संपूर्ण जनसंख्या 40,237, नर नारी अनुपात 976 तथा साक्षरता 54.72% है। 99% जनसंख्या मालाबार उत्पत्ति की मोपलाह है। ये इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। लक्कदीव व अमीन दीवी के निवासियों को तीन सामाजिक वर्गों में करनवास या कोया मामीज या उरुक्कर तथा मेलाचेरीज से बांटा जा सकता है। इनमें प्रथम भूमि वाले किसान, द्वितीय मछुआरे तथा तृतीय मजदूर वर्ग में आते हैं। ये सुंदर, शांत तथा संतुष्ट प्रकृति वाले होते हैं। ये बोलते तो मलयालम है पर इनकी लिपि अरबी है। जबकि मिनिकायवासी सर्वप्रथम श्रीलंका से आए तथा बुद्ध धर्म का पालन करते थे, बाद में इस्लाम धर्म ग्रहण कर लिया। मिनिकाय में चार सामाजिक वर्ग मानिकफैन, थारू रूफैन, थाकुरु व रावेरी हैं, जिनमें प्रथम दो प्रभावी व उच्च वर्ग से संबंधित हैं तथा सरकारी पदों पर हैं अथवा अपनी दुकानें रखते हैं। थाकुरु नाविक व मछली मारते हैं, जबकि रावेरी मजदूर वर्ग से संबंधित होते हैं। यहाँ के निवासी अन्य द्वीपों की अपेक्षा काले व छोटे होते हैं। ये महल भाषा, जो कि मालदीव की भाषा है, बोलते हैं। यात्री व मालवाहक जलयानों द्वारा मुख्य भूमि से आवागमन होता है। द्वीपों की चौड़ाई तथा समतल भूमि कम होने से किन्हीं किन्हीं द्वीपों में ट्रैक्टर व ट्रॉली सामान ढोने में प्रयुक्त होती हैं। द्वीपों पर आवागमन हेतु साइकिल तथा एक द्वीप से दूसरे द्वीप आवागमन हेतु पोतों का प्रयोग होता है। कारावाथी द्वीप पर स्थित कारावाथी राजधानी है। मालदीव, लक्कदीव, चागोस अंतः समुद्री कटक पर दोनों के मध्य श्रीलंका के लगभग 400 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित मालदीव 2000 प्रवाल द्वीपों का समूह है, जिसमें केवल 200 पर जनसंख्या का निवास है। ये 12 स्पष्ट प्रवाल समूहों में है, पर प्रशासनात्मक दृष्टिकोण से 19 जिलों में बांटे गए हैं। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 298 वर्ग किलोमीटर है। इब्न बतूता नामक प्रसिद्ध यात्री 1343-44 में जहाज डूबने के बाद यहीं विवाह कर बस गया तथा कुछ समय तक यहाँ के राज परिवार में सम्मिलित रहकर शासन का कार्यभार भी संभाला। धर्म परिवर्तन में उसकी रुचि के कारण राजा की दृष्टि में संदेह का पात्र बना, जिससे उसे द्वीप छोड़ देना पड़ा। वास्को डी गामा भी यहाँ पर एक अरब नाविक की सहायता से रुका। वास्तव में अरब इसे बहुत पहले से जानते थे, परंतु असंख्य जहाजों के यहाँ की प्रवाल भित्तियों से टकराकर डूबने के कारण इसमें रुचि नहीं लेते थे। मालदीव श्रृंखला के श्रीलंका के इतिहास में से संबंधित है। 1796 में ब्रिटेन ने श्रीलंका के साथ मालदीव को डच लोगों से हथिया लिया। डच लोगों के पास यह 1645 से ही था। श्रीलंका की स्वतंत्रता के साथ मालदीव स्वतंत्र नहीं हुआ, यह 1965 में स्वतंत्र घोषित किया गया। मालदीव की अर्थव्यवस्था प्रमुखतया नारियल व उसके उत्पादनों पर तथा मछली मारने पर निर्भर करती है। संपूर्ण द्वीप नारियल, खजूर व ताड़ के वृक्षों से ढका है। यहाँ 1981 में 11,000 टन नारियल का उत्पादन हुआ। मछलियाँ यहाँ वर्ष भर पकड़ी जाती हैं। यहाँ के 2,000 द्वीपों के बीच बीच में स्थित समुद्री गलियाँ प्राकृतिक आवागमन का जाल प्रदान करती हैं। बोनीटो, जो कि विशेषकर मालदीव में पकड़ी जाने वाली मछली का नाम है, का निर्यात प्रमुखतया जापान को किया जाता है। 1978 में संपूर्ण निर्यात 4.1 मिलियन डॉलर का तथा आयात 13.1 मिलियन डॉलर का हुआ। 1978 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 143,046 थी। माले प्रवाल वलय पर स्थित माले राजधानी है, जिसकी जनसंख्या 29,555 है। सदियों से घनिष्ठ संबंध के कारण मालदीव निवासी बाह्य स्वरूप व भाषा में श्रीलंका निवासियों से मिलते हैं। ये मुस्लिम बहुल हैं। माले प्रवाल वलय के हुलुले द्वीप के हुलुले हवाई अड्डे से भारत से पट्टे पर लेकर बोइंग 737 भारत व माले मालदीव के बीच सेवा करता है। यहाँ स्थित मालदीव इंटरनेशनल एयरलाइन भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भरता है। इस समय एक संधि के अनुसार अद्दू प्रवाल वलय से सुदूर दक्षिण स्थित गण द्वीप ब्रिटेन को 1986 तक के लिए उपलब्ध था। यहाँ ब्रिटेन का हवाई अड्डा है। संयुक्त राज्य अमेरिका से ब्रिटेन की संधि के अनुसार द्वीपों पर दोनों ही देशों का सामरिक अड्डा है। सेसेल्स हिंद महासागर के पश्चिमी अर्धभाग में कई वर्ग किलोमीटर का ऐसा छिछला क्षेत्र है जहाँ समुद्र की गहराई 40 फैदम से भी कम है। इनके समीप 2,000 फैदम के समुद्री नीतल से आता हुआ तीव्र ढाल भूपृष्ठ पर उच्च भूमि के रूप में अवस्थित है। जैसा कि अध्याय 2 में बताया जा चुका है, कई मिलियन वर्ष पहले ये मेडागास्कर को भारत से जोड़ने वाले किसी महाद्वीप के निमज्जन से बने होंगे। यह अनियमित अर्धचंद्राकार रूप में लगभग 1,500 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में उत्तर में 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर स्थित सेशल्स से लेकर मकर रेखा के समीप स्थित दो मृत ज्वालामुखी चोटियों रियूनियन तथा मॉरिशस तक विस्तृत हैं। ग्रेनाइट निर्मित सेसेल्स लगभग 25,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक अंतः समुद्री पठार पर स्थित है। इससे 625 किलोमीटर दक्षिण पूर्वी लगभग 30,000 वर्ग किलोमीटर का छिछले समुद्र का क्षेत्र साया द माल्हा है, जिसके लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण गहरे समुद्र के बाद दूसरी उच्च भूमि नजारेथ बैंक स्थित है। इनके चारों ओर सितारों की तरह बिखरे हुए बालुका निर्मित पाम वर्ग के वृक्षों से युक्त छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं। सेसेल्स के चारों ओर साया द माल्हा के पूर्वी ओर तथा अन्य कई स्थानों पर समुद्री नीतल इतना ऊपर आ गया है कि कभी-कभी लहरों के बीच चमकता दिखाई देता है। 404 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले सेसेल्स के 112 द्वीप व टापू दो स्पष्ट वर्गों में विभाजित हैं। 32 द्वीपों का 234 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला मासे समूह प्रमुख है। इनमें 144 वर्ग किलोमीटर तथा 1971 में 45,204 जनसंख्या वाला द्वीप माहे महत्वपूर्ण है। इस वर्ग के अन्य बसे हुए द्वीप प्रशलिन, लादीग, सिल्हुते, फ्रीगेट व नॉर्थ हैं, जिनकी सम्मिलित जनसंख्या 6,660 है। दूसरा, माहे व मेडागास्कर के मध्य समुद्र के विशाल क्षेत्र में 178 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल तथा केवल 1,000 जनसंख्या वाले 50 द्वीपों का समूह है। प्रत्येक प्रमुख द्वीप निम्न है। पहला, माहे समूह से दक्षिण स्थित अमीरांत, डीरोसेज, पोइवर, डारोस तथा अल्फोंसे को सम्मिलित करके कोएटीबी व प्लॉट द्वीप। दूसरा, माहे समूह से लगभग 1,000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम स्थित अल्डाब्रा, एस्टोव, एजम्पसन व कॉस्मोलेडो द्वीप। तीसरा, मेडागास्कर के उत्तर स्थित फारकर, सेंट पियर और प्रोविडेंस द्वीप। कोएटीबी द्वीप पहले मॉरिशस के आधिपत्य में था, परंतु 1908 में यह सेशल्स को सौंप दिया गया। ये सभी द्वीप प्रवालों के वर्ग से संबंधित हैं, जिनमें प्रवाल भित्ति व द्वीपों के मध्य एक छिछली झील पाई जाती है। इसके भूभागवर्ती भाग में सर्वप्रथम स्केवोला झाड़ियाँ, जिनमें सफ़ेद फूल आते हैं की एक पंक्ति, तत्पश्चात पंखों सदृश पत्तियों वाले कैजुआरीना वृक्षों की कई पंक्तियाँ, जिन्हें इस भाग में फिलाव कहते हैं, अंत में नारियलों की पंक्तियाँ मिलती हैं। बीच बीच में कहीं कहीं क्रियोल मजदूरों की बस्तियाँ पाई जाती हैं। सेशल्स के सभी द्वीपों में 27 किलोमीटर लंबा तथा 6 से 11 किलोमीटर चौड़ा द्वीप माहे, जिस पर राजधानी विक्टोरिया स्थित है, प्रमुख है। माहे में 916 मीटर ऊंचा मोर्न सेसेलोयस ग्रेनाइट निर्मित पर्वत स्थित है। बांस, आम, केला माहे के प्रमुख वृक्ष हैं, जो लगभग सर्वत्र पाए जाते हैं। माहे से 32 किलोमीटर के समुद्री अंतराल पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में 11 किलोमीटर लंबा तथा लगभग 4 किलोमीटर चौड़ा प्रशलिन द्वीप स्थित है। माहे की तरह यहाँ की भी पर्वतीय चोटियाँ वनस्पति रहित हैं। इस द्वीप पर असाधारण प्रकार का दोहरा नारियल बहुतायत में पाया जाता है। अल्डाब्रा द्वीप समूह के कॉस्मोलेडो द्वीप के मध्य में 19 किलोमीटर व्यास की एक छिछली झील है, जिसके चारों ओर कई छोटे छोटे रेतीले बालुका द्वीप हैं। जबकि इसी द्वीप समूह के एस्टोव द्वीप की प्रवाल भित्ति तथा द्वीप के मध्य की झील निम्न ज्वार के समय सूख जाती है। अल्ब्राडा द्वीप स्वयं एक प्रवाल वलय है, जिसके मध्य की 142 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की झील तीन ओर से समुद्र में खुलती है। यहाँ भूमि पर रहने वाला विश्व का सबसे बड़ा जंगली कछुआ पाया जाता है। अल्डाब्रा व कास्मोलेडो पर हरे रंग के कछुए बड़ी संख्या में पाए जाते हैं, जिन्हें सेशल्स भेज दिया जाता है। कास्मोलेडो व एजम्पसन द्वीपों पर दोहरा नारियल तथा समुद्री ककड़ी बहुत अधिक पाया जाता है। सेशल्स तथा इसके समीपवर्ती बैंक मछली की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। सेशल्स के समीपस्थ कॉन्स्टेंट, लाजूनो या टोपाज, बीजीलैंड व फार्चून बैंक तथा सेशल्स के दक्षिण पूर्व स्थित साया द माल्हा तथा नजारेथ बैंकों पर बृहद पैमाने पर मछलियों की निधि सुरक्षित है। यहाँ के जलयानों में अब शीतालयों तथा पैकिंग की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। यहाँ के निर्यात में हिमकृत मत्स्य प्रमुख रहता है। इस समय इस उद्योग को जापान के मछली मारने वाले छोटे छोटे जहाजों की प्रतिद्वंद्विता का सामना करना पड़ रहा है। सेशल्स के लगभग 64,034 1981 के अनुसार निवासी मिश्रित वर्ण के हैं। इनमें अफ्रीका से आए निग्रो मजदूर, जिन्हें यहाँ क्रियोल कहते हैं, फ्रांसीसी, अंग्रेज, चीनी व भारतीय हैं। 1768 से 1814 तक ये द्वीप फ्रांस के आधिपत्य में थे। 1814 में इसे ब्रिटेन ने लिया। 1903 में यह मॉरिशस के प्रशासनिक नियंत्रण से अलग हुआ। 26 जून 1976 को यह स्वतंत्र हो गया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि फ्रांसीसियों के आने के पहले सेशल्स में स्थायी निवासी नहीं थे। पश्चिमी देशों को इसका ज्ञान वास्को डी गामा द्वारा अरब सागर होकर कालीकट जाते समय हुआ। सेशल्स का सांस्कृतिक वातावरण अफ्रीकी मूल के क्रियोल की संख्या अधिक होने से अफ्रीका से प्रभावित लगता है। मॉरिशस की क्रियोल भाषा से यहाँ की क्रियोल भाषा में स्पष्ट अंतर परिलक्षित होता है। यहाँ के क्रियोल सुदृढ़ शरीर वाले, तीखे नाक नक्श वाले, शांत व संतुष्ट प्रकृति वाले होते हैं। ये नारियल का गोला इकट्ठा करने, बढ़ई गिरी, नावें बनाने, मछली मारने तथा कृषि कार्य करते हैं। इनकी बस्तियों के साथ नारियल का तेल निकालने की फैक्ट्री रहती है जहाँ ये तेल निकालते हैं। द्वीपों की अर्थव्यवस्था में कृषि उत्पादनों का बड़ा महत्व है। प्रमुख फसलें 1981 टन में नारियल 3136 टन, दालचीनी 419 टन व चाय 171 टन है। खाद्य फसलें स्थानीय खपत के लिए उत्पन्न की जा रही हैं। यहाँ के भोजन में नारियल व मछली प्रमुख हैं। मत्स्य उद्योग के अतिरिक्त सबसे आधुनिक विकास शराब उद्योग का हुआ है। 1981 में 45.53 लाख लीटर शराब तैयार की गई। इसके अतिरिक्त इस्पात, से तैयार किए जाने वाले छोटे छोटे सामान, फर्नीचर, प्लास्टिक की वस्तुएं, सिगरेट व साबुन का उत्पादन होता है। 1981 में 58.9 करोड़ रुपए का आयात तथा 2.75 करोड़ का निर्यात हुआ। आयातित वस्तुओं में निर्मित वस्तुएं, खाद्य सामग्री, पेट्रोलियम उत्पादन, मशीनरी व आवागमन के साधन मुख्य हैं। प्रमुख निर्यात नारियल, हिमकृत मछली, दालचीनी व मछली की खाद है। कुछ वर्ष पहले माहे द्वीप पर विश्व के सभी भागों से सीधा संबंध स्थापित करने के लिए सैटेलाइट ट्रैकिंग व टेली कम्युनिकेशन स्टेशन स्थापित किया गया। 1970 से 75 के बीच कॉम्बैट जहाज़ों के लिए विशाल हवाई अड्डे का निर्माण कर लिया गया। यहाँ ऑस्ट्रेलिया, सुदूर पूर्व, दक्षिण अफ्रीका व यूरोप के मालवाहक पोत सदैव आते रहते हैं। चागोस द्वीप श्रृंखला, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर के एम्बर अंतरीप के थोड़ा उत्तर से लेकर तक हिंद महासागर के हृदय स्थल पर स्थित डिगो गार्सिया तक के द्वीपों के समूह को मिलाकर 1965 में सुरक्षा के दृष्टिकोण से ब्रिटेन से ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना की। इसके अंतर्गत सेशल्स के अल्डाब्रा, डीरोसेज, प्रोविडेंस तथा फारकर द्वीप, मालदीव के दक्षिण में स्थित पीरोस, बानहोस, डेंजर व डिगो गार्सिया को मिलाकर चागोस द्वीप श्रृंखला के द्वीप आते हैं। परंतु 1976 में सेशल्स की स्वतंत्रता के साथ अल्डाब्रा, डीरोसेज, प्रोविडेंस तथा फारकर द्वीप स्वतंत्र घोषित कर दिए गए और ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी चागोस द्वीप के 5 प्रवाल वलयों, पीरोस बानहोस, डिगो गार्सिया, सोलोमन ईगल तथा एगमॉन्ट तक, जिसका क्षेत्रफल 52 वर्ग किलोमीटर होता है, ही सीमित रह गई। संयुक्त राज्य अमेरिका व ब्रिटेन में 1966 में हुई एक संधि के अनुसार दोनों को मिलिट्री सेवा हेतु ये द्वीप 50 सालों के लिए खाड़ी विशाल 50 सालों के लिए उपलब्ध हैं। फलस्वरूप 1973 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने डिगो गार्सिया में नौसैनिक सुविधाएं विकसित कर लिया है। 44 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाला घोड़े के खुर के समान अनियमित द्वीप डिगो गार्सिया लगभग 50 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। इनके नतोदर भाग में स्थित खाड़ी विशाल व सुरक्षित है। आधुनिक कॉम्बैक्ट विमानों के प्रयोग के लिए उपयुक्त 3,650 मीटर के मिलिट्री रनवे के निर्माण से यहाँ के निवासी पूर्णतया निष्कासित हो गए हैं। 1959 में संयुक्त राज्य नौसेना के एडमिरल मक केन ने कहा है कि माल्टा का जो महत्व भूमध्य सागर के लिए है, डिगो गार्सिया का वही महत्व हिंद महासागर के लिए। चागोस द्वीप श्रृंखला की प्रवाल भित्तियां प्रचंड वातों से प्रभावित रहा करती थीं, अतः इधर से होकर जाने वाले जहाज अक्सर डूब जाया करते थे। बाद में यात्रियों ने इधर से जाना ही छोड़ दिया था। आधुनिक युग में तीव्र तकनीकी विकास से अब स्थिति में परिवर्तन आ गया है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मन जहाज एमडेन ने सर्वप्रथम मालदीव, तत्पश्चात डीगो गार्सिया में शरण लेकर शत्रु के 20 जहाजों को डुबोकर हिंद महासागर में प्रलय का दृश्य उत्पन्न कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह द्वीप अंग्रेजी नौसेना की ईंधन आपूर्ति का अड्डा था। इस प्रकार सामरिक दृष्टिकोण से डीगो गार्सिया बहुत पहले से महत्वपूर्ण रहा है। 1979 में चागोस की द्वीप श्रृंखला में 1,500 व्यक्तियों का निवास था। यहाँ के द्वीपों में हिंद महासागर के अन्य द्वीपों की भांति नारियल, खजूर व ताड़ के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। मुर्गियाँ, बत्तखें तथा जंगली सुअरों की अधिकता है। पहले यहाँ मॉरिशस से लाकर मधुमक्खियाँ पालने का कार्य बृहद पैमाने पर होता था। ये बिना किसी विशेष रखरखाव के स्वयं ही पल जाती थी। गुलाब के बड़े बड़े वृक्षों जो शीघ्रता से बढ़ते व सूखते हैं यहाँ की विशेषता है। फारस की खाड़ी के द्वीप ईरान। फारस की खाड़ी छिछली है तथा अरब सागर की ओर प्रवाल भित्ति से युक्त है। ईरान की ओर गगारी व गहरी है। इस तट से संलग्न बहुत से द्वीप हैं। महत्वपूर्ण द्वीपों में हार्मोज, क्विसम, हंजाम, कायस, शेख साइब व खरग हैं। अधिकतर द्वीप पर्वतीय, अनुपजाऊ तथा श्वेत नमक युक्त चोटियों वाले हैं। इनमें से हार्मोज सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र की तरह तत्पश्चात पुर्तगालियों के खाड़ी में प्रवेश करने के बाद उनके सामरिक नौसैनिक अड्डों के रूप में विकसित हुआ। प्राचीन पुर्तगाली किले के अवशेष इसके प्रमाण हैं। पहले हार्मोज के द्वारा ही मध्य पूर्व से भारत के लिए जलमार्ग हुआ करता था। मार्को पोलो इस द्वीप में कई बार आया तथा इस सागर के महान व सुंदर नगर से अत्यधिक प्रभावित था। पहले आर्मूज नगर विश्व के अत्यंत संबंध बंदरगाहों में गिना जाता था, जबकि यहाँ गंधक व नमक के अतिरिक्त कुछ नहीं उत्पन्न होता था। यहीं से इंडोनेशियन मसालों व अरब घोड़ों का व्यापार भी संपन्न होता था। इसकी सोने की असरफी व चांदी की लॉरेन फारस, अरब, भारत व मलक्का के बंदरगाहों पर चला करती थी। पुर्तगालियों के पहुंचने के बाद गुजरात, मालाबार, कोरोमंडल व बंगाल के भारतीयों तथा पाकिस्तान, ईरान व अरबवासी मुसलमानों के हाथ से संपूर्ण व्यापार निकलकर पुर्तगालियों के हाथ पहुंच गया। आज भी हार्मोज पत्तन फारस की खाड़ी व भारत के बीच व्यापार करने वाले बहुत से जहाजों को बंदरगाह की सुविधा प्रदान करता है। क्विस्म द्वीप में भी एक प्राचीन किले का अवशेष तथा विलियम बैफिन जो आर्कटिक सागर के अन्वेषक थे की कब्रगाह है। इस समय ये द्वीप ईरान के अधिकार में है तथा ये मुख्य भूमि पर स्थित बंदर अब्बास के प्रशासनिक नियंत्रण में है। स्वेज नहर के खुलने के बाद सागरीय यातायात में क्रांतिकारी विकास हुआ है, जिससे खाड़ी में स्थित हार्मोज तथा अन्य छोटे छोटे द्वीपों का महत्व बहुत घट गया है। पेट्रोलियम क्रांति के बाद तो फारस की खाड़ी के अरब व ईरानी तटों पर नए पत्तन व केंद्र महत्वपूर्ण हो गए हैं। इस समय अन्य समस्याओं के अतिरिक्त खरग द्वीप को लेकर ईरान व इराक में तनाव की स्थिति है। सोकोत्रा प्रजातंत्र गणराज्य यमन। समुद्रों में नौकायान तथा उपनिवेश स्थापन के समय से ही लाल सागर के आवागमन के मार्ग पर अफ्रीका के नुकीले शीर्ष के समीप स्थित सोकोत्रा का का सामरिक दृष्टि से बड़ा महत्व था, परंतु इसका खुला व छिछला जलमार्ग जहाजों के लिए खतरनाक समझा जाता था, विशेषकर दक्षिणी पूर्वी मानसून के तूफानी महीनों में। सोकोत्रा ईस्वी संवत प्रारंभ होने के बहुत पहले से जाना जाता था। 1500 BC में मिस्र निवासी लाल सागर होकर द्वीप तक आए थे, परंतु हिंद महासागर के अन्य बहुत से द्वीपों की तरह पुर्तगाली 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी खोज का श्रेय लेते हैं। उन्होंने पूर्वी अफ्रीका के तट से दक्षिण तथा लाल सागर को जाने वाले मार्ग पर अपना नियंत्रण रखा। शीघ्र ही उन्होंने अरब मुख्य भूमि पर अदन की अधिक उपयुक्त स्थिति जानकर सोकोत्रा में अपनी रुचि कम कर दिया। अदन में अपना सुरक्षा अड्डा स्थापित करते ही इन्होंने अत्यंत निराशाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा, क्योंकि अदन अच्छा व सुरक्षित बंदरगाह साबित न हो सका। 16वीं से 19वीं सदी तक सोकोत्रा अरब के एक सुल्तान के अधीन रहा। 1835 में ब्रिटेन ने द्वीप पर अपना अधिकार जमाया। तब से 1966 से 67 तक यह ब्रिटेन के पास रहा। 1967 में यह प्रजातंत्र गणराज्य यमन के पास आया। हिंद महासागर के बहुत से द्वीपों की तरह सोकोत्रा भी आकार में काफी बड़ा है। इसकी लंबाई लगभग 350 किलोमीटर तथा चौड़ाई 30 किलोमीटर से ऊपर है। आंतरिक भाग सामान्यतया अनुपजाऊ पठार की तरह दिखाई पड़ता है। यत्र तत्र जंगलों से युक्त पर्वत भी मिलते हैं। पर्वत श्रेणियों तथा तट के मध्य उपजाऊ लाल मिट्टी मिलती है। इसकी लगभग 20,000 जनसंख्या के जीविका निर्वाह के साधन दुधारू पशु तथा सोमालिया व द्वीप के मध्य के छिछले जल में पाई जाने वाली मछली हैं। यहाँ का लाल गोंद तथा मुसब्बर अभी भी समीपवर्ती द्वीपों को भेजा जाता है। सोकोत्रा निवासी दो मिश्रित वर्ण के हैं, कुछ हल्के रंग के सीधे बालों वाले तथा कुछ गहरे रंग के घुंघराले बालों वाले। ये सब दक्षिणी अरब की प्रांतीय भाषा से मिलती जुलती एक ही भाषा बोलते हैं। इनमें प्राचीन काल में समुद्री डकैती द्वारा लूटी गई संपत्ति से द्वीप के संपन्नता की कहानी अभी भी प्रचलित है। सोकोत्रा की स्थिति का सामरिक दृष्टि से महत्व इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पुर्तगालियों के बाद इसके उत्तरी पूर्वी तट पर स्थित तामारीडा नामक पत्तन पर अंग्रेजों का नौसैनिक अड्डा स्थापित हो गया। इस समय यह रूसी प्रभाव में है।